बहुत जल्दी बात खत्म हो गई आप दोनों की। आपको जो निशा की हेल्प चाहिए थी उसके लिए वो मान गई क्या? वैसे दूसरों की बातें वो कम ही मानती है, अपनी मनमानी ज्यादा करती है।
जी दीदी, उसने कहा है वो मेरी हेल्प कर देगी, वो मेरी हेल्प करने के लिए मान गई है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, वो मेहर से बोली।
ठीक है, जरूर कहूंगा, मेरे लिए आप भी माँ जैसी हैं, कहकर मेहर बाहर की तरफ जाने लगा। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती, आखिर क्या चल रहा है निशा और मेहर के बीच, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मगर इस टाइम तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती, इस खतरे की वजह से, इस आदित्य की वजह से हम सभी लोग घर पर ही नजर बंद हैं, नैना सोचने लगी। इस निशा पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो, मैं मेहर पर तो नजर नहीं रख सकती, निशा पर नजर रखने से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ये निशा। अधिराज भी मेहर की पूरी हेल्प की थी, बहुत सारी बातें अधिराज ने ही मेहर को बताई थी, क्योंकि घर की अंदरूनी बातों के बारे में अधिराज के अलावा और कोई नहीं जानता था। उन बातों को आधार बनाकर मेहर अपनी जांच में आगे बढ़ रहा था। अधिराज और आदित्य चाहे दोनों सौतेले भाई थे, मगर वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आदित्य और अधिराज के स्वभाव में थोड़ा फर्क था, मगर निशा थोड़ी जिद्दी थी, शायद दोनों भाइयों के लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जितना प्यार अधिराज निशा को करता था, उससे दोगुना प्यार आदित्य करता था, ये बात निशा भी जानती थी। अधिराज और नैना की लव मैरिज हुई थी, मगर दोनों में बनती नहीं थी, लड़ाई चलती रहती थी। दोनों के दो बेटे थे, एक का नाम आदेश राजवंश था तो दूसरे का नाम अभिनव राजवंश था। निशा चाहती थी कि बिजनेस पर अधिराज का कंट्रोल रहे, उसे लगता था कि अगर अधिराज की पोजीशन बिजनेस में मजबूत होगी तो घर में उसकी चलेगी, कहीं जब आदित्य राजवंश की पत्नी आए तो बड़ी बहू होने के नाते वो घर में हुक्म ना चलाए। नैना के पिता धर्मपाल राजवंश जी राजवंश के ऑफिस में काम करते थे, उनका राजवंश मेंशन में बहुत आना जाना था। नैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसके बहुत बड़े सपने थे, नैना राजवंश इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। नैना के पिता की सिफारिश पर उसे ऑफिस में नौकरी मिल गई थी, वो धर्मपाल जी को काबिल लड़की लगी और उसे ऑफिस में काफी अच्छी पोस्ट मिल गई थी। शुरू में नैना ने आदित्य को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, मगर आदित्य ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदित्य को माना के सिवा किसी में दिलचस्पी कभी नहीं रही थी। अधिराज ने भी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, नैना ने आदित्य के बाद अधिराज को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अधिराज धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा, धीरे धीरे नैना और अधिराज में नजदीकियां बढ़ने लगीं। फिर नैना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, अधिराज उससे शादी करना चाहता था, धर्मपाल जी को इस बात से कोई एतराज नहीं था। अनीता जी ने कहा कि आदित्य बड़ा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए, मगर आदित्य ने कह दिया कि उसका कई साल शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो अधिराज की शादी नैना से हो गई। आदित्य ने भी अधिराज और नैना की शादी में बहुत हेल्प की थी, क्योंकि आदित्य जानता था कि नैना अधिराज के बच्चे की माँ बनने वाली है। नैना के बहुत बड़े सपने थे, वो पूरे राजवंश बिजनेस की अकेली मालकिन बनना चाहती थी। उसकी तमन्ना थी कि अधिराज पूरा बिजनेस देखे, मगर अधिराज की पोजीशन राजवंश बिजनेस में पहले नंबर 3 पर थी, तो अब जब धर्मपाल जी कम काम करने लगे थे तो वो नंबर 2 पर हो गया था, क्योंकि पूरे बिजनेस को आदित्य ही संभालता था। अधिराज में इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि वो अकेले बिजनेस संभाल सके। नैना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो शुरू से ही अधिराज को इस बात के लिए झगड़ा करती थी कि तुम नंबर 2 पर हो, नंबर 1 पर आदित्य है, तुम उसके नौकर हो, तो अधिराज को उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसे अपने भाई के बारे में ऐसा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से उसकी शादी माना से हुई थी वो और भी परेशान थी, क्योंकि आदित्य माना से बहुत प्यार करता था, माना को घर में बहुत अहमियत मिलने लगी थी, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माना को आते ही घर में बड़ी बहू का दर्जा मिल गया था, वो छोटी बहू बन गई थी। निशा का मेहर से मिलना उसके मन को खटकता था, कहीं इन दोनों में कोई चक्कर तो नहीं है, दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर मेहर सोचता होगा अगर वो निशा को फंसा ले तो इतने बड़े बिजनेस में उसे भी दाखिला मिल जाएगा। रात को खाने के बाद धर्मपाल जी और अनीता जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। अनीता जी को सोचते देखकर धर्मपाल जी बोले, क्यों, क्या हुआ, किस सोच में हो? मैं आदित्य के बारे में सोच रही थी, उसे पुलिस ढूंढ रही है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, मामला सुलझाने की जगह और उलझता जा रहा है। तुम्हें आदित्य पर कितना विश्वास है? मतलब, अनीता जी ने वापस पूछा, क्या लगता है तुम्हें कि आदित्य ने ये सब सच में किया है? क्या वो किसी लड़की का रेप कर सकता है? धर्मपाल जी उससे पूछ रहे थे। जितना मैं आदित्य को जानती हूँ, चाहे मैंने उसे जन्म नहीं दिया मगर मैंने ही पाला है उसे, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे संस्कार मैंने ही दिए हैं, वो एक बहुत अच्छा बेटा है, भाई है, पति है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और फिर आदित्य और माना एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो माना की नजरों में गिर जाए, आदित्य ऐसा काम नहीं करेगा, मुझे भी अपने बेटे पर पूरा यकीन है। अनीता, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया,
अगर वो कहीं छुपा हुआ है तो इस मामले से निकलने के लिए काम कर रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा सारी बात संभाल लेगा। मेहर ने भी मुझसे यही कहा है कि आप बिल्कुल फिक्स ना करें, कोई तो बात होगी जो मेहर जानता होगा। उसकी ये सब कहने के बाद मेरा मन कह रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। धर्मपाल राजवंश अपने बेटे आदित्य पर पूरा विश्वास कर रहे थे। माना का भाई मेहर एक अच्छा लड़का है, जब भी वो मिलता है बहुत रिस्पेक्ट देता है। उससे मिलकर लगता ही नहीं कि हम उसे थोड़े ही समय से जानते हैं। अनीता जी ने मेहर की तारीफ की थी, उन्हें मेहर सच में बहुत अच्छा लगता था। सही कहा तुमने, मुझे वो बहुत पसंद है। बिजनेस में ये लड़का बहुत तरक्की करेगा। मैं अपने मन में सोच रहा था अगर निशा को मेहर पसंद आ जाए तो मुझे निशा के लिए मेहर बहुत अच्छा लगा। धर्मपाल जी की बात सुनकर अनीता उनकी तरफ देखकर हंसने लगी। तुम्हारे बेटे तो बहुत शरीफ हैं दोनों, फिर भी उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। मगर तुम्हारी बेटी पूरा तूफान है तूफान, वो तो अपनी मर्जी से ही शादी करेगी। उसका तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो शादी करेगी भी या नहीं। जैसी उसकी हरकतें हैं ना, उसे देखकर मुझे उससे डर लगता है। तुम तो ऐसे ही घबरा जाती हो। तुम तो आदित्य के बारे में भी कहती थी कि वो शादी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा था, कर ली ना उसने माना से शादी, और उसे इतना प्यार भी करता है। देखना, वैसे ही मेरी बेटी के लिए मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो मेहर निशा के लिए अच्छा है। बात तो आपकी सही है, मेहर एक अच्छा लड़का है, मगर हमारे और उनके आर्थिक स्तर में बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कहती कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, फिर भी जहां बेटी को जाना हो उनका स्तर हमसे बड़ा हो यही अच्छा लगता है। देखना ये लड़का कितनी तरक्की करेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पर। आदित्य का ऐसे अचानक से गायब हो जाना मनोहर लाल और कालू भाई के लिए बहुत गुस्से की बात थी। जिस दिन से आदित्य गायब हुआ था वो पुलिस को नहीं मिला था और ना ही उसका गैंग उसे ढूंढ सका था। उसका मूड बहुत खराब था। उसने माना के बारे में भी पता लगा लिया था। वो जानता था कि माना घर में नहीं है, वो भी गायब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य गायब है, ये बात समझ में आती है, मगर माना घर से कैसे गायब हो गई। वो बहुत परेशान था क्योंकि जैसा उसने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारी बातें उसके प्लान की उलट हुई थी।
मनोहर लाल को नशा बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो उसे महेश खन्ना की फैक्ट्री से मिल सकता था। उसने खुद भी कोशिश की थी कि कैसे सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल जाए, मगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उसे लाइसेंस नहीं मिला था। फिर उसने पता करने की कोशिश की कि उसे नशे के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो उसकी सबसे पहली नज़र महेश खन्ना की फैक्ट्री पर गई। उसने फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था, मगर हेरा फेरी से थोड़ा ही कच्चा माल मिला था। उसे और ज्यादा कच्चा माल चाहिए था नशा बनाने के लिए। उसे नशा बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी। उसने प्लान बनाया कि क्यों ना फैक्ट्री ही खरीद ली जाए। वो महेश खन्ना से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया था। वहां पर वो माना से टकरा गया। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? ये ऑफिस है, कोई बाजार नहीं जहां पर मुंह उठाए आ रहे हो, माना गुस्से से बोली। मनोहर लाल माना को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया था। माना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आकर अपना काम करने लगी। मनोहर लाल को ऑफिस में उस दिन महेश खन्ना नहीं मिला था तो वो वापस चला गया, मगर माना उसके दिल में उतर गई थी। माना को कैसे पाना है इसी बात को सोचने लगा। उसने माना की सारी जानकारी निकलवाई। जानकारी से पता चला कि वो महेश खन्ना की बेटी है। उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़का देख लिया है और जल्दी ही उसकी सगाई होने वाली है। उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना माना से शादी करके कानूनी तौर पर फैक्ट्री पर कब्जा किया जाए। ऐसे उसे माना भी मिल जाएगी और फैक्ट्री भी। मनोहर लाल की नज़र जिस पर गई थी, माना वो पहली लड़की नहीं थी। पहले भी ऐसे कई बार हो चुका था। जो लड़की मनोहर लाल को पसंद आई थी वो उसे उठा लेता था। उसने कई लड़कियों को किडनैप कराया था, मगर उसके खिलाफ कोई रेप का केस रजिस्टर नहीं हो सका था। माना का जादू मनोहर लाल के सिर चढ़ चुका था। उसको माना के ही सपने आते थे। वो हर कीमत पर माना को पाना चाहता था। वो चाहता तो माना को किडनैप करवा सकता था, मगर उसे माना के साथ साथ वो फैक्ट्री भी चाहिए थी, तो उसके लिए उसने महेश खन्ना से मीटिंग फिक्स की थी।